ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरन्मोलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुवर्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुवर्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलम् ॐ तो आज मैं इस वंदना के बाद पूर्व में भी कुछ मैं अपना प्रवचन किया हूँ उसके उपरांत वो उसमें तो प्रवचन और किताब के माध्यम से अपना संदेश मैं दिया हूँ वो आप लोग कुछ जाने हैं और जानेंगे लेकिन मूल बिंदु से आज मैं अपनी प्रवचन को देना चाहूँगा है क्या अध्यात्म है क्या अध्यात्म के जरूरी क्या है इस बिंदु पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा देखिए अध्यात्म दो तरह के मनुष्य पूजा पाठ कर रहे हैं एक तो कर्मकांड के माध्यम से देवी देवता की को पूजते हैं ये कर्मकांड है इस कर्मकांड से अंतर जगत को कुछ लेना देना नहीं है अंतर जगत में प्रवेश के लिए अध्यात्म है अंतर साधना अध्यात्म है देवासुर संग्राम देव और असुरों के साथ संग्राम है इसमें आप अंतर जगत में जाने के लिए अपने अनेक कठिनाइयों से का मुकाबला आपको करना है और उससे लड़ते हुए अध्यात्म में प्रवेश करना है अध्यात्म का मतलब है आत्मा को जानना अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना अध्यात्म का मतलब है आत्म आनंद की प्राप्ति में प्रवेश करना ये है अध्यात्म तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसकी मार्ग कुछ मैं आप लोगों को अपनी अनुभव के अनुसार कुछ देना चाहूँगा अपनी अनुभव के अनुसार अध्यात्म है क्या अध्यात्म में प्रवेश कैसे होगा तो शरीर और आत्मा का मिलन बिंदु का यही नाम ब्रह्म शक्ति है अध्यात्म में प्रवेश के लिए शरीर और आत्मा से मिलन बिंदु तो शरीर और आत्मा से मिलने के लिए आपको अंतर जगत का ही यात्रा करनी पड़ेगी तभी आप अध्यात्म में पहुंचेंगे जैसे बीज का नाश प्रकृति है और प्रकृति का नाश ही बीज है, इस प्रकार आपको अंतर जगत की साधना के लिए मनुष्य को अब साधना की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतर जगत की साधना के लिए सर्वप्रथम अंतर जगत की सफाई की आवश्यकता पड़ती है। अब शरीर की सुरक्षा, शरीर की व्यवस्था, शरीर की नियमितीकरण, ये सारी बिंदु अभ्यास में आता है और अभ्यास द्वारा ही अंतर जगत में प्रवेश। अभ्यास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपका हर काम दिनचर्या को करते हुए अपनी समय को 10-20 मिनट के लिए अपने लिए अध्यात्म में लगाइए। कर्मकांड देवी देवता के पूजने के लिए कर्मकांड किया जाता है, परमात्मा में प्रवेश के लिए अध्यात्म में जाना पड़ता है। जैसे पहला क्लास के मास्टर मात्र पहली ही विद्या बताएंगे, दूसरे क्लास में जाने के लिए आपको अध्यात्म का मार्ग लेना पड़ेगा। इसलिए आपको अध्यात्म में जाने के लिए शरीर की सफाई, खान पान को नियमित करना, अध्यात्म में जाने के लिए अधिक से अधिक फलाहारी होना ही जरूरी है आपको। इसके बाद मनुष्य की शरीर की देखरेख, शरीर की दशा दिशा, माने किस हालत में शरीर अध्यात्म में प्रवेश करेगा, किसी तरह के आसन हो, अगर साधक को बैठने में भी दिक्कत हो रही है तो आराम से पलंग पर बिस्तरा लगा दे, चद्दर साफ सुथरा लगाकर, तकिया लगाकर और तकिया पर मुड़ी रख करके भी साधना कर सकता है, साधना कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो आसन पर भी बैठे। ईश्वर है क्या? ईश्वर की परिभाषा है जिसका कोई आरंभ नहीं है और न कोई अंत है, जिसका कोई गुण नहीं फिर भी उसके अंदर जो उपस्थित है वही ईश्वर है। जैसे एक फूल की विशेषता कि आप पूर्ण बखान नहीं कर सकते हैं, एक फूल का ही पूर्ण बखान मनुष्य नहीं कर सकता है, तो ईश्वर को बखान करने के लिए उसके पास कहाँ से वस्तु आएगी? ये इंद्रियों के पास उतनी वस्तु नहीं है जो ईश्वर की पूर्ण रूप में बखान कर सके। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए राग से निकलना पड़ेगा। अध्यात्म में प्रवेश के लिए राग से निकलना पड़ेगा। राग का मतलब है घर द्वार से स्नेह को कम करना। मात्र राग से निकलने के मतलब है घर द्वार से स्नेह को कम करना। भाई, घर द्वार से स्नेह कम करने का मतलब ये नहीं हुआ है घर द्वार, बाल बच्चा, खेती बाड़ी छोड़ो। अरे भाई, वो सब तुम्हारे काम आएगा, तुम उससे काम लो, लेकिन अपनी मन को अध्यात्म में लगाओ, उससे प्रेम कम करो। वो तुम्हारे काम की वस्तु है लेकिन तुमको सहायता करेगा, लेकिन तुम अरे अध्यात्म में जाने के लिए उस सहायता उससे लो और आगे बढ़ो। अध्यात्म में जाने के लिए घर द्वार नहीं छोड़ना है। घर द्वार से जितनी आप स्नेह कम करेंगे उतना ही राग आपसे दूर होते जाएगा, आप बैराग उसमें भरते। जितना स्थान आपको राग हटेगा उतना ही बैराग की प्राप्ति होगी, धीरे 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 राग निकलेगा, बैराग भरेगा। जब बैराग आपके अंदर भरने लगेगा तब आपके अंदर अनुराग की जन्म होगी, अनुराग पनकेगा, तब अनुराग का जन्म होगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तब आपको शांति आनंद की प्राप्ति होगी, आत्मदर्शन होगा। मनुष्य के अंदर तीन महाशक्ति हैं। मनुष्य के अंदर नाड़ियों का विस्तार सेना है। वो तीनों विशाल नाड़ियों का सेना का सेना नायक है। कौन है भाई? आ तो पहला है इंगला नाड़ी, दूसरा है पिंगला नाड़ी, तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी। अब भला बताइए, इन महाजाल का तीन सेना है। इंगला नाड़ी जो है रजोगुणी का महा संचालिका है और पिंगला नाड़ी तमोगुणी का संचालिका है। रजोगुण और तमोगुण मिलकर के मनुष्य को अपने प्रवाह में लेकर के, धारा प्रवाह में लेकर चलता है। वो इसी दरमियान कुछ कुछ मनुष्य कर्म कांड भी कर लेते हैं, देवी देवता को भी पूज लेते हैं, लेकिन वो अस्थाई पूजन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रजोगुण आ तमोगुण के प्रवाह में चलते हुए कुछ समय के रूप करके कर्म कांड में आते हैं। उनके अंदर विशाल सतोगुणी शक्ति जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। वो सुषुम्ना नाड़ी जो रजोगुण और तमोगुण की प्रभाव से बीच में दबी हुई है, उसमें ताकत नहीं मिलता है, वही नाड़ी को शक्ति देने के लिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। अध्यात्म अंतर जगत की यात्रा होती है, अंतर जगत में ही सुषुम्ना नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति प्रदान के लिए ही अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। भाई, अध्यात्म की आवश्यकता अगर सचमुच पड़ती है तो सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति देने के लिए। जब अभ्यास द्वारा इंगला पिंगला रजोगुण और तमोगुण को साधक सम करने लगता है, धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण को सम करने लगता है, तब उनकी ताकत धीरे धीरे थमने लगती है। जितनी ताकत रजोगुण तमोगुण को थमती है उतनी ताकत सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी धीरे 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 बलवान